की वाणी है। सत्रह पांच पैंसठ की रिकॉर्ड चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नीचे नीचे सुकून भी बच्चे ने भी तो सुना, शिव को भोलानाथ कहा जाता है। किसका नाथ? जो भोले भाले बच्चे हैं उनका नाथ। और फिर जो डमरू बजाते हैं डमरू किसके सामने बजाते हैं? वो तो भक्ति मार्ग में बजाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में सारी बातें हैं कहां की? मदारी डमरू बजाते हैं ना। अब डमरू को बंदर के आगे बजाया जाता है, सेना भी किसकी प्रसिद्ध है? बानर सेना। राम की सेना बहुत प्रसिद्ध है। इस समय ये जो डमरू बजते हैं भक्ति मार्ग में, ऐसे डमरू कभी इधर की बातें कहेंगे कभी उधर की बात कहेंगे। डमरू दोनों तरफ बजता है, दाई ओर भी बजता है अगरम और बाई ओर भी बजता है बगरम। कुछ न कुछ अगरम बगरम करना है। तो वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये जैसे बंदरों से आगे डमरू बजते हैं, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनसे वेद शास्त्र उपनिषद आदि से डमरू बजते हैं, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितने आश्रम है जहाँ जाकर के रहते हैं, परंतु इन आश्रमों में है माव्यक्ति कुछ भी नहीं है। समझते हैं गुरु लोग हमें वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही जाकर प्राण त्याग दें। परंतु वहाँ जाकर के प्राण त्यागने से भी कोई वापस तो जा नहीं सकता। वो तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। कौन? आश्रम के जो भी गुरु आदि हैं वो अपनी भक्ति सिखलाते हैं। यहाँ के बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। क्या वानप्रस्थ मन? वान मन वाणी, प्रमाण प्रकट रूप इष्ठ माने स्थिर हो गए। ऐसी स्थिति जहाँ वाणी से प्रकट रूप में स्थिर हो गए, वाणी की दरकार भी न पड़े, ऐसा सच्चा सच्चा वानप्रस्थ ये है। बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो सबका वानप्रस्थ है। क्यों? भक्ति मार्ग में तो 60 साल के हो जाते हैं तब वानप्रस्थ में जाते हैं। अभी बच्चे बूढ़े जवान सबका वानप्रस्थ क्यों है? क्योंकि ये सबका लास्ट जन्म है, ये सबका आखिरी जन्म है। बाप मुक्ति धाम ले जाने के लिए पुरुषार्थ कराए रहे हैं। कहाँ ले जाने के लिए? दुख दर्दों की दुनिया से मुक्त स्टेज का अनुभव कराने के लिए बाप पुरुषार्थ कराए रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे ले जाने का रास्ता बता दे। गति सदगति बता तो एक ही है। बात ऐसे ही कैसे दृष्टि व्यवहार को छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाऊं? جاتی کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے گرگت سے چھوڑ دیا ہے ویسے تم بھی ہمارے چیلے بن جاؤ اور آ کر ہماری سیوا کرو. باپ کہتے ہیں یہاں ایسا کچھ نہیں کہتے. ہاں جو سروس لائے کے ان کو رکھا جاتا ہے اوروں کو بھی وان پرست کا راستہ بتاتے رہیں گے. سروس دن ہے تو کیونکہ ابھی سب کا وان سے پرے جانے کا سمے ہے. وان پرست اتنا مکتی دھام لے جانے والا ایک ہی باپ ہے. اس باپ کے پاس تم بیٹھے ہو. جو لوگ بل وان پرست لیتے ہیں پرنتو واپس تو کوئی نہیں جا سکتے. بان پست میں لے جانے والا ایک ہی بات ہے وہ اچھی مت دیں گے. کوئی کہے بابا ہم گھر بار لے کر کے یہاں آ کر بیٹھ جائیں پورے گھر بار کے ساتھ آ جائیں. باپ کہتے ہیں نہیں دیکھنا ہوتا ہے یہ سروس لائق ہے اتوا نہیں ہے. کوئی بن بن مکت ہیں بزرگ ہیں سروسیبل ہیں تو ان کو سیمت دی جاتی ہے. بزرگ ہیں گھر میں کوئی کام دھندا نہیں ہے ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے ادھر سے تو ان کو پرمیشن دیتے ہیں. اور کس کو دیتے ہیں؟ یس سروسیبل ہیں دوسری سیوا میں بڑے ایکسپرٹ ہیں اور بندھن مکت. کئی پرکار کا بندھن لوکک جیون میں جن کو نہیں ہے ان کو بھی رائے دی جاتی ہے کہ بھلے تم اسی سیوا میں لگ جائے. جیسے بچے کہتے ہیں سیمینار کرو تو سروس کی پرکریا سیکھے. کنیاؤں کے ساتھ ساتھ ماتائیں پرش بھی سیکھتے جائیں گے. ایسے نہیں کہ کنیاؤں کو منگائے باقی کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ شعر نہیں آ رہا ہے. میں بابا روز شکشا دیتے رہتے کیسے کس کو سمجھانا ہے رائے دیتے رہتے. پہلے تو ایک ہی بات سمجھاؤ جس کو یاد کرتے ہو وہ تمہارا کیا لگتا ہے. بھگوان کو تو یاد کرتے ہیں لیکن ان سے پوچھو کہ وہ تمہارا لگتا کیا ہے. اب لگتا تو تب ہو جب پریکٹیکل بھی موجود ہو. اگر باپ ہے تو باپ سے تو تم سے ورثہ ملنا چاہیے. تم تو باپ کو جانتے ہی نہیں ہو پھر ورثہ کیسے لوگے. کہہ دیتے ہو سب میں بھگوان ہے کڑ کڑ میں بھگوان ہے تمہارے میں بھی ہے میرے میں بھی ہے تو پھر باقی سدگتی میں کون لے جائے گا. سدگتی راتا تو ایک ہی ہے. کہہ دیتے ہو کڑ کڑ میں بھگوان ہے تو تمہارا کیا حال ہو جائے گا. ابھی تم بچے جانتے ہو ہم بابا کے سنم کو بیٹھے اور بابا ہم کو لائٹ بنائے رہے ہیں کانٹے سے پھول بنائے کر کے ساتھ لے جا رہے ہیں. باقی اور تو سب جنگل کا ہی راستہ بتاتے. باپ تو کتنا صحیح راستہ بتاتے ہیں سیکنڈ میں جیون مکتی جاری ہوئی ہے. وہ بات کوئی جھوٹ ہو رہی ہے. کون سی بات کہ ایک سیکنڈ میں جنک کو جیون مکتی ملی. بابا کہا یعنی تم جیون مکت ہو گئے لیکن دل سے کہا ہو. اندرونی دل سے اگر یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا بابا ہے تو جیسے جیون مکت ہو گئے. باپ پہلے پہلے اپنے گھر لے جاتے اپنے گھر میں جاتے ہیں کہاں بان سکتے ہوئے وانی سے جو پری دھام ہے مکتی دھام وہاں نہیں جاتے ہیں پہلے پہلے وہاں نہیں جاتے ہیں پھر بعد میں بعد میں پھر نئی دنیا میں بھیج دیتے ہیں جیون مکتی دھام میں بھیج دیتے ہیں تم سب اپنے گھر کو بھول رہے ہو نا تو پہلے گھر نہیں جاتے ہیں کہتے بھی وہ گاڈ فادر سبھی مینجرس میسنجرس کو بھیج دیتے ہیں دھرم استھاپن کرنے کے لیے جب وہ بھیج دیتے ہیں میسنجرس کو تو خود تو نہیں آتے نا اس میں تو سر جاتی کیسے ہوا اوپر سے بھیج دیتے ہیں نا ایسے ایسے بولتے ایک رہتے ہیں پھر مانتے نہیں ہیں باپ دھرم استھاپن ارتھ بھیج دیتے ہیں تو سنکھیا بھی ان کے پیچھے آنے لگ پڑے گی کیونکہ جن میسنجرس کو بھیج دیتے ہیں ان کے فالو ارتھ کی سنکھیا بھی ان کے پیچھے پیچھے ایک ایک کر کے آنے لگ پڑے گی پہلے پہلے ہے دیوی دیوتاؤں کی سنکھیا پہلے پہلے آدھے سناتن دیوی دیوتا دھرم والے لکشمی نارائن آئیں گے اور اپنی پرجا سہت آئیں گے کیا دوسرے دھرم کے جو میسنجرس دھرم استھاپک آتے ہیں وہ اپنی پرجا سہت نہیں آتے پرجا ان کی 200 سال کے بعد بنتی ہے لکشمی نارائن آئیں گے تو اپنی پرجا سہت آئیں گے اور کوئی پرجا سہت نہیں آتے وہ دھرم پتا ہے تو ایک آئے گا پھر دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا اور یہاں تو تم سب ایک ساتھ تیار ہو رہے ہو باپ سے ورثا لینے کے لیے کیونکہ یہاں راجدھانی استھاپن ہوتی ہے انہوں نے دھرم پتاؤں کی آنے کے ترنت بعد راجدھانی استھاپن ہوتی نہیں ہے ان کو تو 100-200 سال اپنی جن سنکھیا بڑھانے میں لگتا ہے یہ اسکول ہے گھر میں رہتے ایک گھڑی آدھی گھڑی آدمی کی تم آدھے ایک سیکنڈ میں تم کو صرف بتلاتے پرم پتا پرماتما سے تمہارا کیا سمبندھ ہے اگر باپ نہیں سمجھتا ہے تو سمجھو یہ تو جنگلی جانور ہے کسی کو باپ کا پریچے دو اور باپ کا پریچے اس کی بدھی میں نہیں بیٹھتا ہے تو پھر اسے روانہ کر دینا چاہیے کیوں یہ کوئی جنگلی جانور ہے کانٹے کے جنگل کا ہے کانٹے کے اگر آ بھی گیا تو آگے چل کے باپ روپ سے پھر کانٹے کے جنگل میں چلا جائے گا کنورٹ ہو جائے گا تو سمجھو کہ یہ کوئی جنگلی جانور ہے مکھ سے کہتے بھی ہے پرم پتا وہ تو سب کا باپ کریئٹر ہے وہ سب کا پتا ہے سب دھرم پتاؤں کا بھی پتا ہے وہ تو کریئٹر ہے کریئٹ کرنے والا ہے سب دھرموں کا کریئٹر ہے ہر دھرم سے چنندہ سے ساتھ کو پہلے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اگر پھر بھی باپ نہ سمجھے تو کہیں گے تم تو مور ہو باپ سور کا رہتا ہے تو ضرور سور کی بات کہیں گے ہیونلی گاڈ فادر کہا جاتا ہے ہیون کا رہتا ہے تو ہیون ہی لے جائیں گے نا نرک کو نارائن بنانے والا راجیوگ مشہور ہے نرک کو کیا بنا دیتا ہے نارائن جیسا دیوتا بنا دیتا ہے نر کہا جاتا ہے منشی کو منشی کہا جاتا ہے وکاری کو نارائن ہے نروکاری وکاری منشی کو نروکاری دیوتا بنانا یہ ایک پرم پتا پرماتما کا کاریہ ہے کوئی منشی گرو یہ کام نہیں کر سکتا نرکو نارائن بنانے والا راجیوگ ہے ये सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजोरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी। तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण होगा। बाबा हर एक की नदी देखते हैं, इनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाबा लाइट देख करके फिर डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि जो आए तो उसको डायरेक्शन दे देंगे कि हाँ तुम आ जाओ सेवा में लग जाओ। हर एक की नदी देखी जाती है, सर्कमस्टांसेस देख करके कहा जाता है, उनके घर में बंधन है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, घर में कोई परवरिश करने वाला नहीं है, तो थोड़े कह रहे हैं सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि तुम यहाँ रह सकते हो या नहीं रह सकते, सर्विस भी करते रहो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बुजुर्ग भी चाहिए, कमजोर भी चाहिए, सबको सब शिक्षा मिलती रहती है, क्योंकि ये पढ़ाई है भगवान वाच की। सत्र 565 की वाणी का दूसरा पी भगवान कहा जाता है, निराकार को उसको कहा जाता है बिंदी को, निराकार माने बिंदी, बिंदी को भगवान कहा जाता है नहीं क्यों? अगर बिंदी को भगवान कहा जाए तो बिंदी 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 आत्मा कीड़े करोड़ों की भी होती है, पशु पक्षियों की भी होती है, तो सारे भगवान हो गए नहीं। निराकार कहा जाता है जो निराकारी स्टेज को पकड़ ले, सदैव निराकारी स्टेज में रहे। निराकारी होगा तो निरहंकारी भी होगा, निरहंकारी होगा तो निर्विकारी भी होगा, उसको कहा जाता है सद्गुरु निराकार। तो बोला भगवान कहा जाता है निराकार को, तुम आत्मे उनके बच्चे हो, मन तुम कभी निराकारी स्टेज धारण करते हो, कभी निराकारी स्टेज को धारण नहीं कर पाते। प्रैक्टिस कराने आता है आपसे मन बनाने के लिए, इतनी उसे निराकारी स्टेज को पकड़ो तो मनुष्य से देवता बन जा रही है। तुम कहते हो गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी हो रही कहेंगे, लौकिक बाप सर्वव्यापी होता है क्या? अभी तुम फादर कहते हो तो जाते भी हो, पति तो पावन बाप है तो जरूर यहाँ आए पावन बनाने में ना, क्या है? लेकिन यहाँ आएंगे ब्रह्मा के तन में और वाणी सुना करके चले जा देंगे, फिर देवधारी धर्मगुरु बैठ करके पावन बनाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो बाप का ही टाइटल है पतित पावन, तो मनुष्य गुरुओं का या गंगाओं का या जमुनाओं का ये टाइटल नहीं हो सकता। तुम बच्चे जानते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, बाप कहते हो मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आएंगे मेरे बच्चों, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो क्या? जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हो हम भी उससे वर्षा लेते हैं, तो फॉलो करो किसको? मम्मा बाबा को फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करके दिखाओ। मम्मा बाबा नरसिंहायण बनने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों बने? मम्मा बाबा तो नरसिंहनारायण बनते हैं कि नहीं बनते है? ये वाणी 65 में सुनाई जा रही थी, 65 में जब ये वाणी सुनाई जा रही थी तो जो सुनाने वाला था शिव, जिसमें बैठ करके सुनाए रहा था वो बाबा ब्रह्मा बाबा तो सत्यमुनि नारायण बनने वाला था ना, तो सत्यमुनि नारायण बनने वाला था तो बोला मम्मा बाबा नरसिंह नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। ये नहीं कहा नरसिंह नारायण बनते हैं, क्या कहा मम्मा बाबा नरसिंह नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, खुद नरसिंह डायरेक्ट नारायण नहीं बनते। क्या बनते हैं नरसिंह पहले प्रिंस बनेंगे गर्भ से जन्म लेकर, फिर प्रिंस बड़ा होगा तब नारायण बनेंगे। तो कहा कि नारायण बनने की वो कथा सुनाते हैं तो हम फिर कम क्यों बने, वो तो सोना कला संपूर्ण शक्ति से आदमी नारायण बनेंगे। अगर हम दूसरी डिनाइसी में आए तो चौथाई कला कम हो जाएगी ना, तो हम कम क्यों बने, हम कम बने या बराबर बने या उससे भी ऊंचा बने, ऊंचा नहीं वाणी में तो बोला है मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूं, तुम बच्चे इससे भी जाति सीखे जा सकते हो, किससे ब्रह्मा से भी सीखे जा सकते हो, कैसे क्योंकि ब्रह्मा का लक्ष्य नर से नारायण बनने का पूरा नहीं हुआ, उनका लक्ष्य क्या हुआ नर से प्रिंस बनेंगे प्रिंस से फिर नारायण बनेंगे। तो हम फिर कम क्यों बने, जानते हो वही नारायण से चेता में राम भी बनेंगे, क्या कहा वो ही नारायण, कौन से नारायण जो उनसे कम नहीं बनने वाले हैं, समझे ब्रह्मा बाबा जो सत्युग में जाके प्रिंस बनेंगे प्रिंस से नारायण बनेंगे सोलह कला संपूर्ण, उस नारायण से कम बनने वाले तुम बच्चे नहीं हो, मन तुम ही तुम बच्चों में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो पुरुषार्थ करें तो नर से डायरेक्ट नारायण जैसे बन सकते हैं, और नारायण जैसे जो बनते हैं डायरेक्ट वही फिर त्रेता में जाकर के राम भी बनते हैं। तो वही नारायण से त्रेता में राम भी बनेंगे, पहले तो सूर्य जी में जाना पड़ेगा ना, तो बच्चों को समझ तो है बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ नहीं सकता, बाप सीमत देते हैं, हम जानते हैं उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है, मेरी तो प्रजापिता कहाँ से आए, क्या कहा हम जानते हैं कि इनमें शिव बाबा की प्रवेशता है, किनमें ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता है, अगर प्रवेशता नहीं है तो प्रजापिता कहाँ से आए, बोला ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदलवाती है और प्रजापिता प्रजापिता तो जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता चाहिए, तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदलवासी बन गए सनार्थक के बाद, ब्रह्मा सनार्थक के बाद सूक्ष्म बदलवासी बन गए तो प्रजापिता कहाँ गया, इसका मतलब जो ब्रह्मा सूक्ष्म बदलवासी बन गए उनका मात्र टाइटल था प्रजापिता का, वो असली प्रजापिता नहीं थे, इनकी शिव बाबा की प्रवेशता है नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए, ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदलवासी है प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना, मैंने प्रजापिता का जो पार्ट है वो आज से लेकर के अंत तक प्रजा के साथ है, जैसे शिव बाबा बच्चों को साथ लेकर के जाएगा वैसे प्रजापिता भी बच्चों के साथ ही वापस जाएगा, तो प्रजापिता जरूर यहाँ चाहिए, बात कहते मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, क्या ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, काई की स्थापना करता हूँ, स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, राजधानी की स्थापना करता हूँ या ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ, हाँ ब्रह्मा द्वारा सिर्फ ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण के लिए कहा जाता है जो अपने जीवन में पवित्रता को नंबर वन धारण करती है उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ किसकी? ब्राह्मणों की। तो ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। तो हमें निराकार ज्ञान कैसे सुना देगा? निराकार माने ज्योतिबिंदु कैसे ज्ञान सुना देगा? वो निराकार जब जिसमें प्रवेश करे और उसकी निराकारी स्टेज बने तब हमें असली ज्ञान सुना सकता है। जैसे और धर्म पिताएं सृष्टि पर आए सभी की निराकारी स्टेज चित्र में देखने में आती है। गुरु नानक को देखो, क्राइस्ट को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, चेहरे से ही देखने से उनकी निराकारी स्टेज झलकती है ना। तो जो धर्म पिताओं का भी पिता है, बापों का भी बाप है, वो तो जरूर निराकारी स्टेज में होगा। लेकिन ब्रह्मा के कोई भी ऐसे चित्र नहीं है जिनमें उनकी निराकारी स्टेज देखने में आए। क्यों? क्योंकि उनका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। वो बड़ी से बड़ी माँ है सृष्टि की, लेकिन पिता बीज नहीं है, इसलिए उनकी किसी चित्र में बीज रूप स्टेज नहीं दिखाई गई। माँ होती है धरणी के समान, बीज को धारण करने वाली। माँ होती है स्थूल और बीज रूप जो पिता होता है, जैसा गीता में कहा है बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ, वो तो पिता निराकारी स्टेज वाला होता है। इसलिए बोला मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। तो हमें निराकार ज्ञान कैसे सुना देगा? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, ये ज्ञान कृष्ण की आत्मा में नहीं है। क्या था? कृष्ण पक्का है या बीज है? बीज रूप स्टेज धारण करने वाला निराकारी स्टेज वाला है या कृष्ण सृष्टि का पहला पत्ता है? तो पहला पत्ता है। पत्ते की स्टेज अपनी होती है, बीज की स्टेज और कर्म अपना होता है। तो ये ज्ञान कृष्ण की आत्मा में नहीं है। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी, अभी नहीं है। तुम जानते भगवान द्वारा राज्य शीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको राज्य सिखलाता है, पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम ही राजाओं का राजा बने। वैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं तो वकील बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई से वाय बाप के और कोई पढ़ाई नहीं सकता। ये पढ़ाई करने वाले क्या बनते हैं? राजा बनते हैं, क्योंकि इसका पढ़ाई का नाम ही है राजयोग की पढ़ाई। ये इंजीनियरिंग की डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं है, इसका नाम ही क्या है? राजयोग की पढ़ाई। तुम राजाओं का राजा बनेंगे, तुम्हारी ओम आप देखती हुई है क्या? राजा बनने के लिए मापदंड है। जो दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाता है वो पढ़ाई बाप आकर के पढ़ाते हैं, और एक ही जन्म में आकर के पढ़ाते हैं। बार बार हर जन्म में ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती कि 84 जन्म में ये पढ़ाई पढ़ाई जाती होगी। ये बाप एक ही जन्म में आकर के आत्मा में ऐसी शक्ति भर देते हैं कि वो आत्मा जन्म जन्मांतर का अगर राजा बननी होगी तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखा देगी। तुम्हारी एम आप देखते हुए है, आए हो फिर से ससुर वंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। अभी तो अनेक अनेक धर्म है, अनेक गुरु है, वो सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता बात एक ही है। साधु लोगों की सदगति करने आया हूँ। मनुष्य की बनाई हुई गीता है उसमें भी क्या लिखा है? परित्राण साधुओं का परित्राण रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो साधुओं की सदैव करने आया हूँ, आगे चल करके देवी तुम्हारे आगे पूछ लटका देंगे। अभी तो बहुत अहंकार में तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी एक एक मदीने में लाखों की पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और तुम्हारे तो मुट्ठी भर लोग हैं, इसलिए वो तुम्हारी अभी कोई बात सुनना नहीं चाहते। आज ही चल करके वो तुम्हारे आगे पूछ लटका देंगे। गलत पहले बात तुम्हारी बुद्धि में सारा ब्रह्म अगर आज है, जानते सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर और ये फिर है प्रजापति का क्या? अगर निराकारी स्टेज में है, आकारी स्टेज में है, देवहानि की स्टेज में नहीं है, तो उनको कहा जाता है फरिश्ता। फर्श की दुनिया वालों से उनका बुद्धि का कोई रिश्ता, तो ऐसे जो फरिश्ते स्वरूप हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की स्टेज है। लेकिन अगर उनकी भी ये स्टेज नहीं है तो देवी किसकी औलाद हुए? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हुए। जैसी प्रजापिता की स्टेज चाहिए, प्रजा के साथ प्रजापिता होना चाहिए साकारी स्टेज वाला, ऐसे ही उन बच्चों की भी स्टेज बनती है। तो साकारी, आकारी, निराकारी, ये तीन स्टेज की प्रैक्टिस तुम बच्चों को यहाँ करनी सिखाई है। तो बोला ये तो है प्रजापिता और वो है सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्म विष्णु शंकर। कहते ब्रह्मा के दूर तल में प्रवेश करता हूँ, उनको भी कहते तुम बच्चे भी ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। क्या? तुम पर प्राण का कलश रखता हूँ और ये बीच में सुन लेता है। सन 65 की बात बताई, जिनको सुनाता है डायरेक्ट उन पर ज्ञान का कलश रखता है और ये बीच में माने कौन बीच में सुन लेता है? ब्रह्मा। मैंने मैं इनको नहीं सुनाता हूँ, इनको सुनाता हूँ, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। क्यों? इनको कुछ नहीं सुनाता हूँ। चतुर्थ गुरु ने बोला ब्रह्मा को बाबा देवी बुद्धि कहते। क्या? जैसे बच्चा होता है छोटा, उसको जैसे सुना दो ब्रह्मा। मैंने मैं इनको नहीं सुनाता हूँ, इनको सुनाता हूँ, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। क्यों? इनको कुछ नहीं सुनाता हूँ। तो गुरु ने बोला ब्रह्मा को बाबा देवी बुद्धि कहते। क्या? जैसे बच्चा होता है छोटा, उसको जैसे सुना दो वो बात रिपीट करता रहेगा, बुद्धि में कोई नई बात क्रिएट नहीं करेगा। तो मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, मैंने तुम बच्चों में नंबर वार संसार संसार के बच्चे हैं जो बाबा की सुनाई से बाबा की सुनाई हुई बातों को मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, उन बातों को गहराई से बुद्धि से समझने वाले हैं। बाकी ये ब्रह्म ये बुद्धि से गहराई से समझेगा नहीं, क्योंकि इसका पार्टी है नई पृथ्वी दुनिया में बच्चे के रूप में जन्म लेने का। क्या? और तुमको तो उन बच्चों को जन्म देने वाला माता पिता बनना है। तो जिनको माता पिता बनना है, सचिव में संस्कृत को जन्म देने वाला बनना है, उनकी बुद्धि तो नई दुनिया बनाने के लिए चलेगी या नहीं चलेगी? उनकी बुद्धि तो जरूर चलेगी। तो बोला तुम पर कलश रखता हूँ, बीच में ये भी सुन लेते हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बैस बतलाता हूँ, तुमने इतने जन्म लिए हो, जानवर मिशन भी
मनुष्य ही बन पड़े हैं। इस समय ये दुनिया गौरव कर रहे हैं, बाकी ये कोई नदी नहीं है जिसको नरक कहा जाए। गर्म कुआ में तो बहुत घाटे लग गए हैं। क्या के बारे में
गर्म कुआ में तो ढेर सारी बातें लिख दी, लोग सुन सुन करके डर जाते। आप बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हो गरीब बोले बच्चे, मैं तुमको समझाता हूँ, फिर उठते साहूकार बनाता हूँ। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते अब देखो क्या हो गए, ऐसा गंदर फुल खेल है। गरीब में कितने माला माल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े 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 महल है। कहा अभी भी बने हुए जयपुर में, अभी भी ऐसे ऐसे महल है जो आगे वाले से पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसा नहीं बनाते, राजाओं के महल बनाने का भावका ही अलग होता है। अच्छा अभी मैं फिर से तुमको कितनी खुशी देता हूँ, यहाँ तो बाबा दस साक्षात्कार कराए देते हैं, वो दिव्य व्यक्ति से देखते हैं, वो फिर तुमको प्रैक्टिकल में भी देखना है। क्या यदि आज से लेकर के जितने भी साक्षात्कार कराए वो फिर प्रैक्टिकल में उन बातों को तुम बच्चे देखेंगे, इन आंखों से देखेंगे। वो तो बंद आंखों से साक्षात्कार दिए और तुम बच्चे इन आंखों से देखेंगे, तुमको बहुत खुशी होगी। बत्ती मार हुए नीला भी बल साक्षात्कार हुआ, परंतु वो कोई वैकुंठ की मालिक थोड़ी बनी, तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। शांत हुए बत्ती मार के साक्षात्कारों में और तुम्हारे में शांत हुए, वे सिर्फ साक्षात्कार करते हैं, अल्पकालिक ही खुशी लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में स्वर्ग में नहीं जा सकते। कौन भक्त दुनिया वाली भक्तों की ही बात बाबा कर रहे हैं कि ज्ञान के अंदर भी दीदी दादी दादाएं जो है वो साक्षात्कार करते रहे, उनकी भी बात हो रही है, उनकी भी बात हो रही है। वो भी साक्षात्कार तो करते रहे लेकिन इन आंखों से स्वर्ग स्वर्ग वो नहीं देख सकेंगे, और तुम प्रैक्टिकल में स्वर्ग देखेंगे भी, तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। तुम किससे कहा जाता है, तुम उससे कहा जाता है जिससे सामने बैठ करके बात की जाती है। तो तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो, अभी तो है नरक, एक दो को काटते रहते हो, लड़ते रहते हो, बच्चे बाप का भाई भाई का खून कर देते हैं पैसे के लिए, कोई बिल आदि नहीं करके जाते हैं तो देखो एक आदमी कितना खर्चा करना पड़ता है, आदि क्या पैसी तो कोर्ट ही ले जाती है, वहां लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होगी। आदि की कमाई से तुम इसी जन्म सब पाते, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले पहले बाप का परिचय, बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से कोई फायदा नहीं। बाबा कहा माने बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी बैठ जानी चाहिए, क्यों ऐसे क्यों कहा, जब तप दान पुण्य आदि करते करते भारत की देखो क्या हालत हो गई है, परंतु समझते कोई नहीं है। बच्चे के बाद भगवान मिलेगा, इस बात की समझ कोई तो है नहीं। क्या 63 जन्म की भक्ति जब पूरी होती है तो अंत में अंतिम जन्म में आकर के भगवान की प्राप्ति होती है। अंतिम जन्म ऐसे नहीं जाएंगे संशक्ति से हो गया, क्यों क्योंकि बहुत से ब्राह्मण ऐसे भी है दो दो तीन तीन जन्म भी लेते तो उसे अंतिम जन्म नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं उस समय भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। आया तो भगवान लेकिन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं हुआ, जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि हमको भगवान मिल गया। अगर खुदा न खास्ता बुद्धि में बैठ ही गया साक्षात्कार आदि करने से तो आज बुद्धि में बैठेगा और कल नशा हो जाएगा। तीसरी आंख जब तक नहीं खुली है तब तक परमानंद प्राप्ति की स्थिति नहीं हो सकती है। तो कोई समझते नहीं कि भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, मैंने ज्ञान में आने के बावजूद भी संशक्ति के बाद बहुत से ऐसे हैं जिनकी भक्ति अभी भी चल रही है। क्या भक्ति चल रही है? जैसे भक्ति मार्ग रथ यात्राएं निकालते रहते हैं जड़ चित्रों की, वैसे अभी भी जड़ यात्राएं निकालते रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में पंडित पुजारी कहते हैं चलो कहाँ चलो, तीर्थ यात्रा करने चलो, हमारी कमाई हो जाएगी बीच में, ऐसे यहां भी कहते रहते हैं। ये ढेर सारी बातें हैं जो भक्ति मार्ग की ब्राह्मणों की दुनिया में भी चलती रहती है। भक्ति सारी जब उड़ जाए तो कहेंगे कि ज्ञान का वर्षा परमात्मा बाप से हम बच्चों को मिल गया। जिनको ऐसा वर्षा मिलता है ज्ञान का अतीत, उनके लिए फिर कहा है कि इन आंखों से स्वर्ग को देखेंगे। कौन देखेंगे? जिनकी भक्ति के संस्कार पूरे उड़ जा रहे हैं वो इन आंखों से भक्ति। अगर भक्ति के थोड़े भी संस्कार रह गए, क्या अगर भक्ति की कोई भी निशानी जीवन में देखने में आती है तो इन आंखों से स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। तो कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब मिलेगा और किनको मिलेगा? भक्ति तो सब करते हैं परंतु सबको तो राजा नहीं मिलेगी। तो देखो कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो वो सब भूल जाओ। क्या ये शास्त्र वगैरह जो कुछ पढ़ते हो वो सब भूल जाओ। इन पढ़ने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? भगवान जिनको सन्मुख मिलता है उनको प्राप्ति होती है। सन्मुख मिला नहीं, समझते हैं 69 में शरीर छोड़ गया, फिर वो सुनाई हुई वाणी 68 से पहले की सुन रहे हैं तो सन्मुख तो नहीं हुआ। चलो कैसे कागज से भी सुन रहे हैं तो भी सन्मुख नहीं कहेंगे। यहां तो बोला जो सन्मुख सुनते हो वो ही प्राप्ति कर सकते हो। तो बोला तुम कोई को भी ये बातें समझा सकते हो, ये साथ साथ जो कुछ करते हो तो भूल जाओ। जीते जी मेरे ब्रह्म तो तत्व है, उस ब्रह्म तत्व से वर्षा नहीं हो सकता। क्या ब्रह्म जड़ तत्व है, उस जड़ तत्व में आत्मा निवास करती है। ऐसे ही ब्रह्मा भी जड़त्व बुद्धि वाला है, उसके बुद्धि की पेट में आत्मा रहती है। विभिन्न की पेट से आत्माओं का जन्म होता है ब्राह्मण के रूप में, लेकिन उससे वर्षा नहीं मिल सकता। माने मां से वर्षा नहीं मिलता है, ब्रह्म तत्व है उनसे वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा तो बाप से ही मिल सकता है, बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कलप से हम वहां तक ले रहे हैं। अलग कलप लेते हैं कोई नई बात नहीं है, अभी नाटक पूरा हुआ। ये पुराना चेला छोड़ करके हम सब को वापस आ गए। क्या ये 84 का चक्कर अभी पूरा हो गया? 84 का चक्कर पूरा होना है तो सबको अपने अपने शरीर छोड़ करके बाप सुप्रीम सोल बाप के पास पहुंचने, सुप्रीम अबोध में पहुंचने हैं, सोल वर्ल्ड में पहुंचने हैं। जितना जितने याद करेंगे हम तो बच्चों से गति हो जाएगी। अगर अभी आत्म की स्थिति को याद नहीं करेंगे, आत्मा को याद नहीं करेंगे, आत्मा के बाद परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो वो स्थिति नहीं बनेगी जो जितनी बननी चाहिए। अंत मतों से बचे का मतलब क्या हुआ? अभी हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आत्म की स्थिति उतनी ही अंत में हमारी पक्की हो जाएगी। और वो स्थिति अगर हमारी पक्की हो गई तो हम अव्वल नंबर में पहली रो में अपना हिस्सा अपना वर्षा ले सकते। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सात आत्माओं का हिसाब किताब चुकती होने है क्या? कयामत के समय में हिसाब किताब किसका चुकती होगा? जिन्होंने बहुत पाप किए हैं त्रेसठ जन्मों में, میں نے کہا قیامت کے سمے سے حساب کتاب دھرمراج کے سامنے چکتے ہوتا ہے اور جنہوں نے پن کیے ہیں وہ آتمائیں اپنے پنوں کے فل سروپ یہی پرماتما باپ سے پڑھائی کر کر کے اپنی خوشی کا پرارمب پراپت رہتی ہے. ان کو قیامت کے سمے میں کوئی دکھ نہیں ہو سکتا تو پاپات میں ان کا حساب کتاب چکتے ہونا ہے. ابھی تم بچوں کو پنیا اپنے بن گئے اور بننا بھی کا اسے یوگ بل سے یوگ بل سے پنیاتما بننا ہے. ابھی کوئی پنیاتما ہے نہیں بننا سیمت تو تم پنیاتما بنتی باقی جانا تو سب کو ہے کیونکہ بمبور کو آگ تو ضرور لگے گی آتما واپس چلی جائے گی. ایک دھرم کی استھاپنا ہونی ہے تو ضرور ہم ایک دھرم واپس چلے جا رہے ہیں شریر ضرور ساتھ لے جا رہے ہیں. کیا پرم نام جانے والے کوئی بھی شریر واپس نہیں لے جا سکتے جو ایسا ہے تو کیسے جا رہے ہیں. پھر کوئی کہتے ہیں موکش مل جائے پرنتو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا موکش مانا اس شکتی پر پھر کبھی آنے ہی نہ پڑے ایسا مکھ کبھی نہیں مل سکتا. وہ سادھو سنیاسی بھی یہی بات سکھاتے ہیں ان کی جتنی بھی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو مکھ میں جا رہے ہیں پھر ہم جنم مرنے کے چکر میں کبھی آگے نہیں لیں. ایک طرح کہتے ہیں بھگوان کلپ کلپ اس شکتی پر آتا ہے تو بھگوان کو اس شکتی پر بند نے مان دیا اور خود کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے مکھ ہو جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈراما کی اینڈ نہیں ہوتی. یہ ڈراما بنا بنایا ہے تو سدا کال کی موکش نہیں ہو سکتی. یہ ڈراما سدائے چلتا رہتا ہے اناد چکر پھرتا ہے. ڈراما کو منشی ہی جانیں گے جو جانور بدھی ہوں گے وہ اس ڈراما کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکیں گے نہیں جانیں گے. جانتے ہو منشی کا جانتے ہو تو منشی کہہ لیں نہیں جانتے ہو تو بولا جانور سے ہی بت یہ سچ سچ کیسے کرتا ہے تو راج بات آ کر کے سمجھاتے ہمارا ٹریڈ مارک یہ چک کیا ہمارا ٹریڈ مارک ہے سچ چکر تو مورتی بھی ہمارا ٹریڈ مارک ہے. برہما وشنو شنکر ان تینوں کی جو نیتی ہے یہ بھی ہمارا ٹریڈ مارک ہے اور ساتھ ساتھ یہ ترمورتی کیسے اس چکر کی چکر میں چکر لگاتی ہے یہ بھی ہمارا چکر ہی ٹریڈ مارک گورنمنٹ بھی یہ نشانی رکھتی ہے. کون سی نشانی چکر کی اشوک چکر نشانی ہے. اشوک کی لاٹ دکھاتے ہیں اس میں بھی چکر دکھاتے ہیں جھنڈا دکھاتے ہیں اس میں بھی چکر دکھا دیں پرنتو ہمارا چکر الگ ہے. ہمارا چکر الگ ہے اور ان کا الگ ہے. ہمارے چکر میں کیا خاصیت ہے ہمارے چکر میں کتنی ارے ہیں چار ارے ہیں چکر کو پیتا دوپر انہوں نے پھر چرخا لگائی دیا ہے. تو یہ سب باتیں سمجھانی پڑے کہ ہم نے چکر کیوں رکھا ہے ٹریڈ مارک اور انہوں نے پھر چرخا کیوں لگا دیا نشانی انہوں نے گاندھی جی نے کون سی نشانی لگائی چرخا گھماؤ تو پیٹ پورتی ہوتی رہے گی. یہاں پھر ہم کیا گھمائیں جو ہماری 84 جنم کی پیٹ پورتی ہوتی رہے. ہم یہاں جتنا شکتی چکر اپنی بدھی میں گھمائیں گے 84 کے چکر بدھی میں گھمائیں گے اتنی ہماری آتے لیتے پیٹ پورتی 84 جنم تک ہوتی رہے گی. تو یہ سب باتیں سمجھانی پڑے. ان کا چرخا ہے ایک جنم کی پیٹ پورتی کرنے والا اور ہمارا چکر ہے 84 جنم کی پیٹ پورتی کرنے والا. جب جاتی سمجھنے لگ پڑیں گے تو تمہاری بدھی ہونے لگ پڑے گی. یہ تمہارا بہت اونچ دھرم ہے لیکن ابھی اس کو چڑیاں کھا جاتی ہے تو اونچا دھرم لیکن ابھی اس کو چڑیاں کھا جاتی ہے. کیوں क्योंकि छोटा वृक्ष होता है तो इसको तूफान ज्यादा असर करता है, जब इसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं तो तूफान असर नहीं कर पाता और मर जाने से चिड़िया नहीं खाती है। क्या हाँ तुम्हारा ये धर्म ऐसा है जिससे चिड़िया खा जाती है, उनको माया रूपी चिड़िया खा जाती है, श्रीमत पर नहीं चलते है इससे चिड़िया खाती है। अगर श्रीमत पर चलते रहे तो सुरक्षा होती रहेगी, तो चिड़िया में कोई शौक नहीं रखना है। ये कब्रिस्तान है, बाबा कहते हैं शौक नहीं रखना है, फिर भी बच्चे मानते नहीं है कोई न कोई शौक रखते हैं तो माया की चिड़िया खाती रहती है। अगर ये समझे कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, भाई का स्थान है, इस दुनिया में सब दे अभिमानी की कब्र में दाखिल हुए पड़े हैं, तो इस दुनिया से गहरा गाता रहे। वैसे भी जब संस्थान घाट में लोग जाते हैं थोड़े समय के लिए तो बुद्धि में बैराग आ जाता है। अगर हम सदै ये बुद्धि में धारण करके रखे कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, अभी कब्रिस्तान होने वाली है, तो इस दुनिया से बुद्धि होगी लगेगा नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लोग समझते हैं कि हम इस दुनिया में सुख भोग लें, लेकिन ये सुख भी कैसा है, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, उस सुख का नाम क्या दिया है, काम रिश्ता समान सुख है, काम रिश्ता समान क्यों का है, है? नहीं, मनुष्य जो कुछ खाता है उसका रस खींच लेता है खून बन जाता है, जो कचरा बचता है उसको कहा जाता है विष्ठा, उस विष्ठा को भी कौआ खाता है, उस विष्ठा में से भी कौआ रस निकालता है और रस निकाल के उसका मांस मज्जा खून हड्डी उसकी बनती है, थोड़ा सा उसको हल्का सुख मिलता है कौए इस विष्ठा में से, और कौआ जो कुछ खाता है उसका भी जो कचरा निकलता है उसको कहा जाता है काग विष्ठा समान सुख। तो आज की जो दुनिया के सुख है वो तो कैसे हो गए, जैसे कौए की विष्ठा हो गई, इस दुनिया के सुख भोगने की कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, पुरानी दुनिया से क्या लागत रखनी है, पुरानी दुनिया के सुखों से कोई लागत नहीं, जब मकान पुराना हो गया टूट फूट गया बाप आया हुआ है नए मकान की रचना कर रहा है तो पुराने मकान से कोई चीज दिन लगती है क्या, है सब चीज उपयोग चला जाता है, नए मकान बनेगा उसमें रहेंगे ठाकुर, तो पुरानी दुनिया में लागत नहीं रखनी है, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है और दुनिया वालों की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अमेरिका में भी जो सेंसिबल है वो समझते हैं कि कोई प्रेरक शक्ति है जो हमसे ये एटमिक एनर्जी तैयार करवाई गई है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो हो नहीं है, सब की दिल खाती रहती है, इस दुनिया में सबके दिल अंदर ये बात खाती रहती है विनाश हुआ की हुआ, क्योंकि एटमिक एनर्जी सबके सामने ड्रामा की भागी है। बात बहुत अच्छे रूप से समझाते हैं, सीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो अपन को घाटा पहुंचाएंगे, शिव बाबा तो दाता है उनको कोई आसक्ति नहीं है, कोई सोचे कि बाबा ये बार बार क्यों कहते हैं कि मेरे को याद करो, आत्मी की स्थिति में रहो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो, बार बार क्यों कहता है, बाबा को कोई प्राप्ति होती होगी, लेकिन बाबा की उनकी बातों में कोई आसक्ति नहीं है, बाबा तो तुम बच्चों के कल्याण के लिए ये बात बोल रहा है, आसक्ति नहीं है, खुद ही है ही निराकार, आसक्ति किसको होगी, जिसको शरीर होगा उसको आसक्ति होगी, जिसको रथ होगा उसको स्वार्थ होगा, जिसको रथ ही नहीं तो ही स्वार्थ किस रथ में होगा, वो तो खुद ही निराकार है, ये सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया ही तुम्हारे लिए, ये बात कितनी कही कि नई दुनिया तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। ये नई दुनिया जो तैयार हो रही है तुम्हारे लिए है, जैसे कि बादशाह हम स्थापन करते हैं, हम जादू करेंगे। बाबा कितने मुस्कानी बात कहते हैं, देखो मैं कहाँ से आता हूँ। पति से कहते हैं पति जिस दुनिया में आओ, क्या जो पति तो बच चुके हैं अनेक दिन में घूमते घूमते, वो कहाँ बुलाते हैं मेरे को है? पति दुनिया में बुलाते हैं, कोई स्वर्ग में भगवान बाप को बुलाता है क्या? तो नहीं बुलाता, कहते भी है दुख में सुख में सब करिए, सुख में करे ना कोई, स्वर्ग में कोई मेरे को याद नहीं करेगा। जब दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं कि वे पति के पावन बाप से पति दुनिया में हमको आकर उठाई, हमको आए पति से पावन बनाओ, तो बाप को आना पड़ता है ना, खुशी खुशी नहीं आते, मजबूरी है मेरे को बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। ये पति शरीर है, आखिर की धारणा करनी चाहिए है? आना पड़ता है, ये क्यों कहा? तो बच्चे ये चाहेंगे कि हमको संगीत साथी बूढ़ा बाड़ा खुल 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 करने वाला मिल जाए है? सब क्या चाहते हैं है? हमको संगीत साथी कैसा मिले? अच्छा मिले ना, और बाप को कैसे शरीर मिलते हैं? बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी 84 जन्म पुराना शरीर, 5000 वर्ष पुराना बुद्धा मिलता है, उसे प्रवेश करते हैं, खड़े खड़ाई के में प्रवेश करते हैं। ये पति शरीर है, इसमें आना पड़ता है मेरे को, इस पति शरीर में आना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे पति शरीर में वानप्रस्थ अवस्था में आना पड़ता है। अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए, समझाना चाहिए, और इन बातों को समझेंगे वो जिनका श्री बाबा के साथ पूरा लव रहता है। अगर श्री बाबा के साथ पूरा लव नहीं होगा तो इन बातों को पूरा पूरा समझ भी नहीं सकेंगे। बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खुलेगा, क्या बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो निराकारी स्टेज कहां से बनेगी? निराकारी स्टेज नहीं है बनेगी, तो देवान भरा रहेगा बुद्धि में, आत्मा में देवान भरा रहेगा, तो ताला बुद्धि का खुल नहीं सकता। तुम डबल कंसेंस से हो, तन मन धन सभी कुछ देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो, क्या जो कंप्लीट दानी होते हो वो तुम हो, सुबह तुम क्या देते हो? हो तो तुम दानी कंप्लीट दानी तुम हो, लेकिन श्री बाबा को क्या देते? श्री बाबा को देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? है क्या है? करनी वेर ब्राह्मण कहा जाता है ना, करनी वेर ब्राह्मण होते हैं तो क्या लेते हैं? जब कोई मरता है तो उसकी जो भी पुरानी चीजें होती है, पुरानी कमीज, पुरानी धोती, पुराने कपड़े, पुरानी खटिया, चरपैया है, जो भी पुराना पुराना सामान है सारा लेते हैं, उनको कहा जाता है करनी वोर ब्राह्मण। तो बाप भी क्या बनकर के आया हुआ है? करनी वोर ब्राह्मण बनकर के आया हुआ है। कहते तुम्हारे पास जो भी कपड़े है पुराना ये सब मेरे को दे दो। तुम क्या देते हो? करनी वोर को देते हो ना, नाम तो ईश्वर का ही लेते हैं, करनी भोर को भी देते हैं तो इसका नाम देते हैं ईश्वर, ईश्वर समर्पण, इसको समर्पण करते हैं ईश्वर समर्पण। मैंने ईश्वर भूखा है क्या? वो तो नहीं है, उसको तो अपना मुख और पेट भी नहीं है, वो कैसे खाएगा, वो कैसे पहनेगा? ईश्वर भूखा है क्या? राम कृष्ण समर्पण करते हो, अगर समर्पण भी करते हो, यज्ञ में भी दान पुण्य करते हो तो किसको देते हैं? राम और कृष्ण जो साकार शरीर धारी है जिनमें वो निराकार प्रवेश करता है उसको देते हैं, वो निराकार भी देते हैं। किसको देते हैं, जिसमें प्रवेश करता है उसी को देते हैं ना। तो राम का जो समर्पण करते हो दोनों को भिखारी बना दिए, रामकृष्ण को देते हो माना वो कौन हो गए, रामकृष्ण जी कौन हो गए, भिखारी हो गए। अरे सृष्टि की इतनी ऊंचा पार्ट बनाने वाली आत्माएं, हीरो हीरोइन पार्ट धारी आत्माएं, उनको तुम समझते हो कि हम इनको देते हैं। वास्तव में न तुम शिव बाबा को देते हो और न रामकृष्ण की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं जो सृष्टि पर मानी जाती है वो तुमसे लेने के लिए भिखारी बनकर आई हुई है। तुम किसको देते हो, तुम जो भी देते हो वो अपने लिए देते हो, अपना भाग्य बनाने के लिए देते हो, तुम किसी को देते नहीं। तो दोनों को तुमने भिखारी बना दिया है। अच्छा नीचे नीचे किसी ने बच्चों को बाप दादा का याद प्यार जितना दिए, कैसे बच्चों को याद प्यार भी कैसे बच्चों को देते हैं, क्रोध करने वाले बच्चों को नहीं, जिनके लिए अभ्यवाणी ने बोल दिया अगर क्रोध करने वाले होंगे तो आगे चल के बाप दादा उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे मिलेंगे जिन्होंने क्रोध त्यागा होगा उनसे ही मिलेंगे। जिसको कहते हैं कि हम काम क्रोध लोग धारण नहीं करेंगे लेकिन काम क्रोध धारण करते होते उनसे नहीं मिलेंगे। तो नीचे नीचे सीखने लगे बच्चों से मिलते हैं, ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो नीचे नीचे बन जाते हैं आत्म की स्थिति में रहते रहते जिनकी स्थिति आत्म से बन जाती है, आत्म की स्थिति जिनकी बनती है उनमें मिठास आ जाता है। देहभान जितना रहता है तो वो अपने को भी दुख देता है और दूसरों को भी दुखी करता रहता है। तो ऐसे करोड़ों बच्चों को मैं याद प्यार नहीं दे रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ नीचे नीचे बच्चों को। और फिर कैसे बच्चों को, किसी भी दे बच्चों को किसी भी देना, कोई बच्चा खो जाता है ना और फिर बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा खो गया फिर माँ बाप को वो बच्चा मिला ही नहीं, और बहुत वर्षों के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो गया तब मिला जाके, तो उससे बड़े सिक से मिलते बड़े प्यार से मिलते हैं, तो कहा जाता है सिकिलिदा बच्चा। सिकिलिदा माने बहुत लंबे समय से खोया हुआ बच्चा है और बहुत लंबे समय के बाद आप मिला है जाकर, तो उसका कहा किसी में लगे। तो तुम कब खो गए थे, कब खो गए थे, 5000 साल पहले, योगी के आदमी नहीं है, 5000 साल पहले की बात कहेंगे सिकिम का बच्चा, 5000 साल पहले की बात थोड़ी कहेंगे, कब की कहेंगे। हाँ योगी के आदमी जो बच्चे बिछड़ गए थे वो अभी फिर आकर के प्रैक्टिकल बाप से वर्षा ले रहे हैं, सन्मुख पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मैं उन बच्चों से आकर के मिलता हूँ, उन बच्चों को डायरेक्ट आकर के वर्षा देता हूँ। अच्छा अभी बूढ़े बाबा कहेंगे कि मेरी तो उम्र ही 80 साल की हो गई, कितनी हो गई उम्र है, कितनी उम्र हो गई है, 70 साल, और 70 साल तो योगी को हुए नहीं तो ये तो फैल गई है। तो भले ये शिव बाबा के सामने यज्ञ में नहीं थे लेकिन रामवाली आत्मा के साथ रहे हुए है, रामवाली आत्मा तो सूर्यवंशी है हाँ, तो उस आत्मा के साथ रहे हुए इसलिए उनको भी क्या कहेंगे सिकी लगे। बहुत बहुत समय के बाद मिले हुए सिख से मिलते हैं उसे।